Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं हमारे जिंदगी में जिसका जवाब हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हर सवाल का जवाब हमें खामोशी में जाकर मिलता है। अपने अंदर थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है। वो समय मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके उषा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू
दीदी। हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। दीदी, कई ऐसे पहलू हैं मेडिटेशन के जिसे आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। दीदी, ये भी हमने पिछले बार चर्चा की थी कि कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसे अपना सकता है।
बिल्कुल।
लेकिन दीदी, हर एज ग्रुप में इंसान की समझ अलग अलग होती है, तो ऐसे में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेडिटेशन में और भी ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है?
देखो, मेडिटेशन अकेला काफ़ी नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ हमारी जीवन शैली कैसी है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेडिटेशन को अच्छा बनाने के लिए।
जी,
अगर व्यक्ति की जीवन शैली ही एकदम आलस्य से भरपूर हो या अनेक प्रकार का डोंट केयर या केयरलेस होने की एक आदत सी हो मनुष्य को, तो ज़रूर है कि उसका मेडिटेशन में कभी वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। जीवन शैली जो है हमारी, वो भी एक सात्विक जितनी होती है उतना मेडिटेशन में हमें आनंद आता है।
ओके।
संसार के अंदर तीन प्रकार की जीवन शैली मानी जाती है। एक है सात्विक जीवन शैली, जहां सुबह व्यक्ति जल्दी उठता है और उसकी दिनचर्या ध्यान के साथ, आध्यात्मिक बातों के साथ में जैसे आरंभ करता है, तो जरूर है कि ये सात्विक जीवन शैली, फिर साथ साथ उसका भोजन वैसा है, सात्विक खुराक लेता है, तो वो सब चीज़ें उसके मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है।
जी।
दूसरी बात है कि एक राजसिक जीवन शैली, कि जहाँ व्यक्ति न बहुत देर से लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं उठता है, चलता है, हर चीज में जैसे कि चलाने का प्रयत्न करता है, एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं है उसके अपने लाइफस्टाइल की ओर। और तीसरा है तामसिक जीवन शैली, जहां बहुत देर से उठने की आदत हो, 10 बजे के करीबन व्यक्ति उठता हो, भोजन उसका वैसा है, एकदम तामसिक खुराक लेता हो, तो नेचुरल है कि उसके मन के ऊपर जो इफेक्ट आती है कि उसके बाद वो मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करे, कभी नहीं कर पाता है। तो लाइफस्टाइल और सोच, मेडिटेशन माना सोच अपनी और दूसरी की अपने जीवन की, लाइफस्टाइल कहो या धारणाएं कहो, अपने जीवन के जो वास्तविकता है उससे भी व्यक्ति का बहुत गहरा संबंध है। तो इसीलिए अगर सचमुच हम मेडिटेशन के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम परिवर्तन नहीं कर सकते, माना कई लोग सोच लेते, अरे नहीं, मैं सुबह उठना बड़ा मुश्किल है। अरे कभी ट्राई करके तो देखो। सुबह की जो लालिमा होती है उसको देखने का प्रयास करो, जो प्रकृति के अंदर फ्रेशनेस है उसको महसूस करने का प्रयास करो, देखो ताजगी दिल दिमाग के अंदर आ जाती है।
वाओ,
है ना
जी, जी।
लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने उसी चार दीवारी के एयर कंडीशन रूम में सुबह 10 बजे उठने का अभ्यासी हो, जब सूरज आधा ऊपर आ जाता है, तो उसने कभी वो प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक जो ताजगी है वो महसूस ही नहीं किया।
करेक्ट।
तो उसका दिल दिमाग कभी तरोताजा नहीं हो सकता है।
दीदी, एक खास करके यंगस्टर्स में देखा गया है कि आजकल लेट नाइट पार्टीज की एक लाइफस्टाइल बनती जा रही है। नॉट नेसेसरी यंगस्टर्स ही, आजकल ऑफिसेज में भी कई बार लेट नाइट पार्टीज वगैरह इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। ऐसे में ये देखा गया है कि वो व्यक्ति अगर लेट सोएगा तो ऑटोमेटिकली लेट ही उठेगा, तो वो साइकिल ही पूरा बिगड़ जाता है।
नेचुरल है, इसीलिए पहले के ज़माने के लोग यही कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज।
करेक्ट।
कि व्यक्ति के अंदर विजडम, जिसको कहा जाता है कि आध्यात्मिक प्रज्ञा
जी,
वो उसको तभी प्राप्त होती है कि जब वो सुबह सुबह उठता है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि सुबह जिसको उठने की आदत है उसके मन के अंदर रचनात्मक विचार ऐसे फ्लो होने लगते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे विचार उसको अपने आप में आते हैं, स्फुरित होते हैं।
क्रिएटिव लोगों की अगर मैं बात करूं, आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि रात का जो समय होता है बहुत साइलेंस का समय, ये उनकी सोच है कि रात का जो समय होता है बहुत साइलेंस से भरा होता है, सभी सो जाते हैं, तो उस टाइम पे उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बाहर निकलती है। ये पता नहीं ये कहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन आजकल जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे पेंटर्स हो, चाहे राइटर्स हो, जैसे फिल्म डायरेक्टर्स हो, ऑल दीज पीपल, उनके ये एक दिमाग में आ गया है कि रात का जो समय होता है शांति का समय होता है, उस समय उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बाहर आती है। ये किस हद तक सही है?
ऐसा है कि हो सकता है, क्योंकि देखो आज कोई भी कार्य करने के लिए मनुष्य को एकांत की आवश्यकता है।
करेक्ट।
वातावरण के अंदर साइलेंस की जरूरत है, और दिन का इतना शोर शराबा है तो नेचुरल है उनका माइंड फोकस नहीं होता है।
करेक्ट।
दिन के समय में इतने प्रॉब्लम्स, इतने सिचुएशंस उनके सामने आ जाते हैं, इतनी सारी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, इतनी खबरें उनको मिल जाती है कि जिस कारण से वो मन को एकाग्र करना चाहे तो नहीं हो सकता है।
करेक्ट।
और इसीलिए उनके लिए ये स्वाभाविक हो गया है कि मैं जब रात को एकांत होता है तो मेरे अंदर अच्छे विचार आते हैं।
करेक्ट।
माना कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए एकांत की तो जरूरत है ही है। जो आजकल लोगों की जीवन शैली, जो कहा 10 बजे के बाद उठने की होती है, तो उस शोर शराबे में ही तो उठता है, उसको एकांत कहाँ है। लेकिन यही अगर वो चाहे थोड़ा सा परिवर्तन करके देखे कि सुबह 4 बजे उठ करके देखे, उस समय भी एकांत ही होता है। और उस समय जब फ्रेश होकर के अगर वो बैठता है तो देखे 4 से 6 बजे या 6:30 बजे तक जब दुनिया उठती है, 2.5 घंटे में जो उसकी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी वो रात में 4 घंटे में निकलती है। इसीलिए एकांत जरूरी है, इसीलिए उनको महसूस होता है रात में मेरा दिमाग अच्छा चलता है। लेकिन रात में जो चीज उसने 4 घंटे में बाहर निकाली वो सुबह के शायद 1 घंटा 2 घंटे के अंदर बाहर निकलती है।
करेक्ट।
और उसके बदले अगर रात में वो अच्छी नींद ले लेते हैं और सुबह में जब फ्रेश माइंड से उठते हैं, एकदम रिलैक्स होकर के जब फ्रेश होकर के उठते हैं, बैठते हैं, फ्रेश थोड़ा योगा कर ले, थोड़ा प्राणायाम कर ले, डीप ब्रीदिंग कर ले, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर में ले ले, और फिर देखे तो कितनी क्रिएटिविटी उसकी बढ़ेगी।
करेक्ट।
थोड़ी मेहनत जरूर है, थोड़ी मेहनत जरूर है कि व्यक्ति को सुबह उठने की मेहनत करनी पड़ेगी।
करेक्ट।
और प्रैक्टिस न होने का कारण हो सकता है कि कुछ समय तक उसको आलस्य की फीलिंग आती रहेगी और सो जाए थोड़ी देर, क्योंकि उसको जो 10 बजे उठने की आदत है।
करेक्ट।
तो साइकोलॉजिकली बन जाता है कि बहुत जल्दी उठे ना आज
जी,
इसलिए थक गए, नींद आ रही है, ये हो रहा है, तो कुछ समय तक साइकोलॉजिकली ये फीलिंग आती है, इसीलिए मेहनत लगती है अपने आप से। लेकिन एक बार उस ट्रेंड में अगर चला जाए तो देखे बहुत अच्छी बात, खुद को कितना अच्छा लगने लगता है, उसके बाद वो नींद वाली फीलिंग भी नहीं आती है।
करेक्ट दीदी, ऐसा कहा गया है कि 21 दिनों तक अगर आप कोई भी कार्य को करते हैं तो वो आपके अंदर में जीवन शैली में आ जाता है।
आज बच्चा भी एक रात को जब पढ़ने बैठता है, मैं खुद का अनुभव भी अगर मैं सुनाऊं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब रात को पढ़ते थे तो मुझे जो है सबसे पहले अगर चाय की आदत पड़ी तो क्योंकि रात को मैं पढ़ती थी तो उस समय जब थोड़ा सुस्ती आती थी तो लगता था एक चाय पी ले वे। तो जीवन में चाय की आदत अगर पड़ी थी मेरे को स्कूल डेज में, स्कूल डेज से शुरू हुआ, फिर बाद में चलो मैंने छोड़ दिया कि आज मेरे जीवन में वो एडिक्शन भी नहीं रहा, वो खत्म हो गया, लेकिन उस समय में मैंने चाय शुरू किया था। और वही मैंने जब मेडिटेशन करना आरंभ किया तो मैं रात को सो जाती थी, सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस डाली, तो जो मैं रात को 8 बजे से लेकर के या 9 बजे से जो पढ़ना शुरू करती थी या 10 बजे भी अगर पढ़ने बैठती थी तो 2 बजे तक जो मैं पढ़ती थी तो कितना घंटा हो गया, 10 से 4 घंटा हो गया। वही जब मैंने मेडिटेशन करके सुबह उठना चालू किया तो वो मैंने महसूस किया कि सुबह 4 बजे उठ करके मैं मेडिटेशन करती थी, 5 बजे फ्रेश होकर के मैं पढ़ने बैठती थी, 6:30 तक, 1.5 घंटे के अंदर।
करेक्ट,
उसी चीज को मैं इतना अच्छा मेमोराइज कर सकती थी, बहुत अच्छा दिमाग हो गया था। इतना अच्छा याद शक्ति, मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरी मेमोरी पावर बढ़ गई है।
वाओ, ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल,
हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर हम सही समय पर सोएंगे और सही समय पर उठेंगे और शुरुआत मेडिटेशन से करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा,
बहुत अच्छा जाएगा
जी।
और जब वो पढ़ करके मैं जाती थी तो क्या होता था कि मैं जब एग्जाम पेपर लिखती थी तो इतना ही माना जो फ्रेश पढ़ के आई हूँ सवेरे सवेरे, तो जैसे सब कुछ याद रह जाता था और जैसे मैं वो चीज लिख डालती थी।
करेक्ट,
लेकिन जो रात को पढ़ने के बाद फिर थोड़ा देर सो जाओ 8 बजे तक के 9 बजे तक, फिर एग्जाम पेपर लिखने जाओ तो कई चीजें वॉश ऑफ हो जाती थी।
ओके,
कई चीजें भूल भी जाती थी। लेकिन वो सुबह उठ करके जो पढ़ा होता था वो जैसे अभी तो पढ़ के आए।
करेक्ट,
ये फील होता था। कोई एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है।
बिल्कुल,
इसीलिए मैंने कहा कि रात कोई भी कार्य करने के लिए एकांत जरूरी होता है।
करेक्ट,
और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई कि सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है। इसलिए उसको लगता है रात में अच्छा होता है, लेकिन अगर रात में इतना अच्छा होता तो सुबह जल्दी उठ करके ट्राई करके देखें, उससे डबल गुना अच्छा होगा और कम समय में।
दीदी, लाइफस्टाइल के अंदर दूसरा पहलू ये आता है कि खान पान भी आजकल थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। आजकल हम टेस्टी फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ना कि ब्लैंड फूड की तरफ। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि अगर हम सही तरीके का खान पान करेंगे तो उससे भी हमारे मेडिटेशन पर या हमारे लाइफस्टाइल पर असर पड़ेगा?
बहुत, इसीलिए मैंने पहले ही ये बात कही, तामसिक भोजन जो है मन को भी अशुद्ध कर देता है।
okay.
और इसीलिए विचारों के अंदर तामसिक विचार जो आते हैं, हिंसक विचार
जी,
जैसा खुराक खाते हैं वैसा तो प्रभाव पड़ना ही है।
करेक्ट,
इनफैक्ट मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी और उस मैगजीन में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ी, और वो ये बात थी कि बीच में एक बीमारी आई थी लोगों के अंदर, और ख़ास करके ये बीमारी अमेरिका के अंदर खास देखने को मिलती थी, जिसको कहते थे मैड काउज डिजीज।
ओके,
आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मैड काउज डिजीज। मैड काउज इसीलिए उसको, उस बीमारी को कहा, एक्चुअली ये डिप्रेशन को कहा मैड काउज। तो क्यों, तो कहा कि जो सारा बीफ, गाय का जो मांस होता है उसको बीफ कहते हैं, तो यूरोप के अंदर जैसे दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा है वर्ल्ड में जाता है और दूध अच्छा माना जाता है, तो वहाँ पर जो गायें होती थी तो कुछ साल जब दूध उनका नहीं निकलता था, नहीं देती थी, तो उसको कत्ल घर में भेज देते थे और उसको काटते थे और उसका बीफ टिन्स में पैक करके खास करके उस वेस्टर्न दुनिया के अंदर जाता था और लोग खाते थे उसको। अब हुआ ऐसे कि जब वो गायों को कत्ल खाने भेज दिया जाता था तो उनको पता चल जाता था।
ओके।
कहा जाता कि जब और उसको डर होने लगता था। आज जब देखो प्रैक्टिकली मैंने तो ये बात देखी है कि जब बकरी की बलि चढ़ाते हैं तो उस दिन बकरी को जब घास डालते हैं ना तो नहीं खाती है। और उसके पैर ऐसे शिवरिंग होते हैं। इसी तरह ये गाय को भी पता चल जाता है कि अब मेरा समय आ गया है, तो उनके अंदर एक ऐसा भय, जब भी इंसान के अंदर भय होता है, इंसान क्या कोई भी प्राणी के अंदर भय उत्पन्न हुआ तो उसके दिमाग से ऐसे केमिकल्स का सिक्रिएशन होता है।
ओके।
और वो केमिकल्स जो है वो जैसे हमारे सारे शरीर में वो केमिकल फ्लो होता है, तो ठीक इसी तरह ये गायों के दिमाग से भी वो केमिकल सिक्रिएशन रिलीज होता है डर का
जी,
और वो सारा उनके शरीर के अंदर प्रवाहित होता है। और जब उसको काटते हैं वो केमिकल को तो अलग नहीं कर सकते हैं ना, वो तो मांस में चला गया,
बिल्कुल
ब्लड के साथ जैसे उसमें चला गया
जी।
अब जब चला गया और वही टीन्स को पैक करके उसको भेज दिया गया, अब जो लोग वो खाते थे तो उनके अंदर वो केमिकल्स जाने लगे।
ओके।
इसीलिए उनको जीवन के अंदर भय बहुत महसूस होने लगा, इतना भय महसूस होने लगा कि धीरे धीरे लोग डिप्रेशन में जाने लगे। काफी समय के रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये गायों का जो बीफ आ रहा है उसके अंदर वो केमिकल्स जो सिक्रिएशन हुआ है वो केमिकल से लोगों के अंदर ये डिप्रेशन की बीमारी आने लगी है। इसीलिए उसका नाम दे दिया मैड काउज डिजीज।
ओके।
कि उस समय वो पागल जैसी हो जाती है, मैड काउज हो जाते हैं, काउज जो है मैड हो जाते हैं, और इसीलिए उनका बीफ खाने से ये होता है।
दीदी पर ये तो कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज के बारे में कहा
डेफिनेटली डेफिनेटली,
क्योंकि कोई भी प्राणी अगर उसे डर आने लगे मौत के समय में तो वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा,
वो फैलता ही है।
ओके।
और इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये बकरी की भी बलि चढ़ाते हैं और उसका मांस भी खाते हैं तो वो लोगों के दिमाग में या तो हिंसक भाव उत्पन्न होता है
जी,
और वो हिंसक भाव के कारण ही आज व्यक्ति कई बार सोच समझ के कार्य नहीं कर पाता है।
करेक्ट।
और फिर धीरे धीरे उनके अंदर जो नेगेटिविटी है बढ़ती जाती है।
ट्रू।
है ना। तो कहने के भावार्थ मेरा यही है कि उस चीज को वॉश ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो क्लीन कितना भी करें लेकिन नहीं क्लीन होता है। तो मनुष्य के अंदर आज डिप्रेशन की जो स्थिति आती जा रही उसका एक फैक्टर नॉन वेज खाना भी है, तामसिक भोजन है।
जी दीदी बिल्कुल, हम ध्यान देंगे कि हम जितना हो सके नॉनवेज से पूरी तरह से बाहर निकल जाएं, क्योंकि उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जो हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाते जा रहे हैं। दीदी साथ साथ एक्सरसाइज की अगर हम बात करें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है, लेकिन मुझे ये भी जानना था कि कई बार ऐसा होता है कि मन की एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती, तन की एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, साथ ही साथ मन की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इसी वजह से लोग बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं।
बिल्कुल। और इसीलिए जो सुबह सुबह व्यक्ति उठता है थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेता है, प्राणायाम कर लेता है, मेंटली रिलैक्स हो जाता है थोड़ी देर, सारा दिन उसका प्रभाव उसके दिनचर्या के ऊपर पड़ता ही है और उसके संबंधों पर अच्छा आता है। इसीलिए व्यक्ति जितना हेल्दी है अंदर से, मना इसका मन दुरुस्त है
जी,
तन दुरुस्त है, तो उसका संबंध भी दुरुस्त ही होगा।
वाव, दिस इज सो ट्रू, क्योंकि आजकल हम सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स इतने बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने शारीरिक ध्यान भी नहीं रख रहे, अपना आत्मिक ध्यान भी नहीं रख रहे, तो फिर उसका असर हमारे रिलेशनशिप्स पर ऑटोमेटिकली पड़ेगा। दीदी, पर ऐसा भी होता है कई बार कि भले हम अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा समझदारी अपनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसका असर हम ऑफिस में जाकर डाल देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक सिचुएशन लाइफ की बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम उसका आउटफ्लो रॉन्ग कर रहे हैं। क्या मेडिटेशन इस चीज़ को स्टॉप करने में भी हेल्प करता
बिल्कुल,
है?
बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप करता है, क्योंकि मान लो कि एक जगह पर स्ट्रेस क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा तनाव आ गया एक जगह पर, ऑफिस में कोई बात को लेकर के, कोई सिचुएशन को लेकर के, कोई प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यक्ति तनावग्रसित हो गया, तो नेचुरल है कि कई बार उसको कैरिड फॉरवर्ड कर लेते हैं,
करेक्ट,
कि घर लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जब घर में भी आए और थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मेडिटेशन कर लो, तब आप देखेंगे कि वो चीज़ आप कैरिड फॉरवर्ड नहीं करेंगे।
ओके,
इसीलिए जापान के अंदर, आज इतना छोटा सा जापान लीडर हो गया सारे वर्ल्ड के अंदर, उसका कारण यही है कि वहाँ पर एक वर्क कल्चर ऐसा बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले वहाँ मेडिटेशन रूम में उसको जाना पड़ता है। हर कंपनी में एक मेडिटेशन रूम बनाया जाता है बेसमेंट में
जी।
पहले उनका मानना ये था कि व्यक्ति के जो भी इमोशंस जनरेट हो उसको निकाल देना चाहिए
जी।
और इसीलिए उन्होंने पहले एक नीचे बेसमेंट में एक ऐसा कमरा बनाया था जहाँ एक बूथ बनाया था कि मान लो कि आपको अपने बॉस पर गुस्सा आता है, नीचे आकर के निकाल दो, गाली दो, जो करना है करो, आप ब्रिंग आउट दोज इमोशंस, डोंट लेट इट बी देयर। तो ये जो भी आता था, मना पहले 15 दिन में एक बार लोग जाते थे, इमोशंस अपने निकाल करके ऊपर आ जाते थे, रिलीज हो गए, जैसे फ्री हो गए, है ना, खूब गालियां दे करके आ गए बॉस को। फिर उसके बाद देखा गया कि कोई भी चीज बार बार करने से संस्कार बनता है,
करेक्ट।
तो जो पहले 15 दिन में जाते थे 10 दिन में जाने लगे, हफ्ते में जाने लगे, हफ्ते में भी 3 बार जाने लगे, फिर हर रोज जाने लगे, रोज तो हो गया लेकिन दिन में 3 बार जाने लगे। तब उन्होंने रियलाइज किया कि तो बढ़ता जा रहा है,
करेक्ट,
और व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, बहुत एक दूसरे को लिटरली वर्कप्लेस पर भी शुरू होने लगा।
ओके,
तब उन्होंने सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग, तो एक मेडिटेशन रूम बना, उसी रूम को मेडिटेशन रूम में ट्रांसफर कर दिया कि जो भी ऐसे आपको नेगेटिव इमोशंस आए, इस मेडिटेशन रूम में आकर बैठ करके रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाएंगे आप, सारा अपना स्ट्रेस रिलीज कर दो और फिर आप शांत होकर के जाइए।
बिल्कुल,
धीरे धीरे लोगों के जो नीचे कमरे में जाने की आदत थी कम होती गई, बहुत कम ऐसा होने लगा, और धीरे धीरे वापस जो एक पॉजिटिव ऊर्जा, क्योंकि मेडिटेशन करने लगे, अब इनका ये कल्चर ये हो गया कि उस मेडिटेशन रूम में कंपलसरी जब घर से आओ ताकि घर का स्ट्रेस ऑफिस में नहीं आए, नीचे बैठो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठो, मेडिटेशन करो, उसके बाद ऑफिस में जाओ, ऑफिस से जाते वक्त भी नीचे जा करके मेडिटेशन में बैठो, फिर घर जाओ ताकि ऑफिस का स्ट्रेस घर में नहीं, घर का स्ट्रेस ऑफिस में नहीं। अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है उनका।
दिस इज सो ब्यूटिफुल दीदी, आज हमने इतनी सारी इम्पॉर्टेंट बातें जानी, जिसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदलना है तो कहीं ना कहीं पहल हमें खुद ही करनी पड़ेगी।
बिल्कुल,
और साथ ही साथ हमने ये जाना कि वर्क प्लेस और घर का माहौल, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें जानी, जिसमें सबसे मेन पॉइंट्स कुछ इस प्रकार थे कि हमें अपने सोने का समय भी सही तरह से तय करने की ज़रूरत है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात हमने जानी कि खान पान में नॉन वेजिटेरियन डाइट, उसके कई सारे नुकसान हमने आज जाने। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में वेजिटेरियन डाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। सुबह उठकर अगर हम मेंटल एक्सरसाइज अर्थात मेडिटेशन करें और फिज़िकल एक्सरसाइज अर्थात प्राणायाम या योगा, इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।